मीखा अध्याय पांच। अब अध्याय पांच में मीखा दूर भविष्य के दृश्य को छोड़कर निकट भविष्य में लौट आता है। मीखा अध्याय पांच पद एक। अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इसराइल के न्यायी के गाल पर सोटा मारेंगे। ये यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी है जो मत्ती अध्याय 26 पद 67 में पूरी हुई कि वो सोटों से पीटा गया। इस प्रकार भविष्यत वक्ताओं ने जो घोषणा की थी वो पूरी हुई। मीका यहां मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है और वो निश्चय ही मसीह में पूरी हुई। मीका अध्याय पांच पद दो। बेतलहेम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस भविष्यवाणी के अनुसार बेतलहेम मसीह का जन्म स्थान होगा। यहूदियों ने इस भविष्यवाणी पर बरसों विश्वास किया। जब ज्योतिषी हेरोदेस के पास आए और राजा के जन्म के बारे में पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? हेरोदेस ने यरूशलेम में शास्त्रियों से पूछा और उन्होंने उसे उत्तर दिया, बेतलहेम में, क्योंकि भविष्यत वक्ता ने कहा था, हे बेतलहेम, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से। सो उन्होंने उस दिन ये विश्वास किया था कि बेतलहेम ही मसीह का जन्म स्थान होगा। अब जब यीशु मसीह वहां पैदा हो चुका तो उस भविष्यवाणी का फिर से पूरा होना असंभव है, क्योंकि अब बेतलहेम में दाऊद के घराने से कोई नहीं बचा। बेतलहेम अब अरब का शहर है, अतः शास्त्रियों ने मीका की भविष्यवाणी का आज कुछ दूसरा ही अर्थ निकाल रखा है और वे कहते हैं इसमें कहीं भी मसीह का जिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी हेरोदेस के समय में शास्त्रियों और याजकों ने इस पर पूरा विश्वास किया था और बेतलहेम को मसीह के जन्म स्थान के रूप में देख रहे थे। इसलिए मैं शास्त्रियों और याजकों और हेरोदेस के समय की बातों के पक्ष में हूं। वे सत्य के करीब थे और सच में बेतलहेम ही मसीह का जन्म स्थान बना। सन 70 में रोम के राजा तीतुस के समय से इसराइल का जो विनाश हुआ है, तब से लेकर आज तक बेतलहेम यहूदियों का नगर नहीं है। यदि आज के युग में देखा जाए, कोई भी अपनी वंशावली को राजा दाऊद तक सिद्ध नहीं कर सकता। इस कारण इन बातों पर आज तर्क वितर्क करना अर्थहीन ही होगा। अतः बेतलहेम ही वो जगह थी जहां से यहूदियों के राजा को जन्म लेना था। उसका निकलना प्राचीन काल से होता आया है। अब यहां भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह अनादि काल से था और अनादि काल केवल परमेश्वर के लिए उपयोग किया जाता है। अनादि काल शब्द इब्रानी में बहुत रोचक शब्द है। इब्रानी में ऐसा दो शब्द है जिनका अर्थ अनादि काल निकलता है। पहले मूल शब्द का अर्थ है लुप्त होने का स्थान। इसलिए आप अपने दिमाग को भूतकाल में अनंत तक पीछे, या जैसे वे कहते हैं 10 अरब साल पीछे ले जाएं, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। क्या आप अपने दिमाग को 10 अरब साल पीछे ले जा सकते हैं? क्या आप 10 अरब साल को अंतर्ग्रहण कर पाएंगे? मुझे इसमें शक है, लेकिन हम इसे अंकों में तो स्वीकार कर ही सकते हैं, लेकिन सृष्टि से पहले क्या था? आपका दिमाग आपको कितने पीछे लेकर जा सकता है? हमारा दिमाग एक सीमित सीमा तक ही पीछे जा सकता है, लेकिन जितना पीछे हम जाएंगे, रेखाएं उतनी ही अधिक केंद्रित होती जाएंगी, जब तक कि आप एक ऐसे बिंदु तक ना पहुंचे कि उसके आगे और कुछ ना दिखाई दे। यही लुप्त होने का बिंदु है। इब्रानी में अनादि काल के लिए यही शब्द है। ये लुप्त बिंदु है जिससे परे आप कुछ और नहीं सोच सकते। दूसरे शब्दों में आपका दिमाग लुप्त बिंदु तक ही जा सकता है और फिर उसके परे उसका निकलना अनादि काल से है, अर्थात लुप्त बिंदु के पहले से ही वो विद्यमान है। यूहन्ना अध्याय एक में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय एक पद एक से तीन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आदि में ये कब था मैं नहीं जानता, लुप्त बिंदु से भी पहले। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और फिर यूहन्ना हमें बताता है, यूहन्ना अध्याय एक पद 14, और वचन देहदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और वचन बैतलहम में देहदारी हुआ ताकि भविष्यवाणी पूरी हो सके। हे बैतलहम, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना वो हमेशा से विद्यमान था, प्राचीन काल से वरन लुप्त बिंदु के पार से होता आया है। मीका अध्याय 5 पद 3, इस कारण वो उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे, तब इसराइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। इसलिए मसीह काटा गया था, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया। इसराइल का त्याग करने में परमेश्वर का एक उद्देश्य था। इस समय हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां परमेश्वर अन्य जातियों के बीच काम कर रहा है, जिनके द्वारा मसीह की कलीसिया या देह का निर्माण हो रहा है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसराइल में फिर से जच्चा का सा दर्द उत्पन्न ना हो। तब परमेश्वर का अनुग्रह और महिमा इसराइल की संतान को फिर से प्राप्त हो जाएंगे। अब निश्चय ही मसीह को पाने की लालसा में उनके साथ ऐसा ही होगा। मीका अध्याय 5 पद 4, और वो खड़ा होकर, ये भविष्यवाणी इसराइल के साथ मसीह के संबंध के बारे में है जो मसीह के राज्य के युग की है। मीका अध्याय 5 पद 4, और वो खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा, और वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वो पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। याद कीजिए कि जिब्रेल ने पैदा होने वाले बच्चे के बारे में मरियम से क्या कहा था। उसने कहा, लूका अध्याय 1 पद 32, वो महान होगा और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। जिब्राइल की ये बातें जो उसने मरियम से कही, पुराने नियम की भविष्यवाणियों से जुड़ी है। मीका अध्याय 5 पद 5, और वो शांति का मूल होगा। वो शांति का मूल है। यशाया ने भविष्यवाणी की थी, यशाया अध्याय 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अब मीका भविष्यद्वक्ता कहता है वो हमारी शांति है। इफिसियों की पत्री में भी यही कहा गया है, क्योंकि वो हमारी शांति है जिसने मनुष्य के सारे बंधनों को तोड़ दिया और हम सबको अपने में एक कर लिया। जब तक मनुष्यों के मध्य उपस्थित अलगाव की दीवारों को गिरा ना दिया जाए, तब तक सच्ची शांति नहीं आ सकती। वो हमारी शांति है जिसने इन दीवारों को गिरा दिया। अतः ये मनोहर भविष्यवाणियां मसीह के बारे में है। मीखा अध्याय 5:5 में आगे लिखा है, जब अशूरी हमारे देश पर चढ़ाई करे, ये भविष्यवाणी अंतिम दिनों में रूस के द्वारा होने वाले आक्रमण के बारे में है। मीखा अध्याय 5:5 के अंत में लिखा है, और हमारे राजभवनों में पाव धरे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे। आप पूछेंगे वे कौन हैं? मैं नहीं जानता। जब ये सब घटित होगा तब हम जान जाएंगे। मीखा अध्याय 5:6, और वे अशूर के देश को वरन पैठाव के स्थानों तक, निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अशूरी लोग हमारे देश में आए और उसके सिवाने के भीतर पांव धरे, तब वही पुरुष हमें उनसे बचाएगा। उन दिनों में उत्तर का राजा केवल रूस ही नहीं, परंतु संभवतः हर मिगदोन का भी संदर्भ है। मीखा अध्याय 5:7, और याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे। ये शायद उन 144,000 की सेवकाई के बारे में है जो महाक्लेश के समय में होगी। मीखा अध्याय 5:7 से लेकर 15 तक, और याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे जैसा यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस, जो तरोताजा करती है, और घास पर की वर्षा जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्यों की बाट नहीं जोती। और याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे वन पशुओं में सिंह वो भेड़ बकरियों के झुंडों में जवान सिंह होता है, क्योंकि जब वो उनके बीच में से जाए तो लताड़ा और फाड़ता जाएगा और कोई बचा ना सकेगा। तेरा हाथ द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नाश हो जाएं, यहोवा की ये वाणी है। उस समय मैं तेरे घोड़ों को तेरे बीच से नाश करूंगा और तेरे रथों का विनाश करूंगा, और मैं तेरे देश के नगरों को भी नाश करूंगा और तेरे किलों को ढा दूंगा, और मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे, और मैं तेरी खुदी हुई मूर्ति और तेरी लाठे तेरे बीच में से नाश करूंगा, और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत ना करेगा, और मैं तेरी अशेरा नामक मूर्तों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा, और मैं अन्य जातियों में से जो मेरा कहा नहीं मानती क्रोध और जल जलाहट के साथ पलटा लूंगा। ये महाक्लेश का समय होगा जिसके बारे में हमने दानियल के पुस्तक में और योहन्ना के प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है तथा यीशु ने भी उल्लेख किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस महाक्लेश के बारे में एक बात पर ध्यान दें। परमेश्वर घोषणा कर रहा है, मैं उनसे बदला लूंगा और अपना क्रोध भड़काऊंगा। किस पर? आपको ये जानकर खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपने उस क्रोध के लिए नहीं रख छोड़ा है। परमेश्वर के न्याय होते समय उसका क्रोध और दंड अन्य सब जातियों के ऊपर भड़केगा, ऐसा जैसा कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दानियल ने कहा, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। यीशु ने कहा, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा ना कभी पहले हुआ और ना कभी फिर होगा। वे इसी महाक्लेश के समय के बारे में कह रहा था। ध्यान दीजिए कि उस समय परमेश्वर जिन्हें साधन स्वरूप इस्तेमाल करेगा वे यहूदी है, कलीसिया नहीं। यहूदियों में से बचे हुए विश्वासी उस बड़े कष्ट के समय पृथ्वी पर परमेश्वर के गवाह होंगे। कलीसिया तो उठा ली जाएगी और परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में मेमने के ब्याह के बोझ में आनंद कर रही होगी। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। यीशु ने कहा, हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि जो कुछ इस पृथ्वी पर होने वाला है उससे बच सको और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रह सको। हमने प्रकाशित वाक्य के अध्याय 5 में पढ़ा है कि स्वर्ग में जो सिंहासन पर बैठा था उसके हाथ में एक पुस्तक थी जिस पर भीतर और बाहर लिखा हुआ था। वो उसके दाहिने हाथ में थी और स्वर्ग दूत ने ऊंचे स्वर के साथ ये घोषणा की, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है? और योहन्ना ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर और ना ही पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरे तोड़ने के योग्य निकला। परंतु धर्मवृत्त ने कहा, योहन्ना मत रो, देख यहूदा के कुल का वो सिम इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरों को तोड़ने के लिए विजयी हुआ है। और योहन्ना कहता है, मैं पलटा और मैंने उसे एक वध किया हुआ मेमने के समान देखा। वो आया और उसने उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। तब 24 धर्मवृद्ध हाथों में धूप से भरे हुए सोने के कटोरे लेकर सामने आए जो कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। उन्होंने परमेश्वर के सामने सब अर्पण किया और वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल, भाषा, राष्ट्र और जाति से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। तूने उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़ा होना, यही वो स्थान है जहां मैं होना चाहता हूं। यहां नीचे नहीं, जहां परमेश्वर अपने क्रोध को अन्य जातियों पर उंडेलने वाला है, परंतु परमेश्वर की संतान के साथ सिंहासन के सामने खड़े होना है।